मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 17 फरवरी 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं उन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं लवकुश कुमार मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से, प्रशांत कुमार आप वैशाली बिहार से, अंकित कुमार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, ज्योति पासवान वेस्ट बंगाल से और हरिकृष्ण कुमार सिवान बिहार से। लवकुश, प्रशांत, अंकित, ज्योति और हरिकृष्ण सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों अब कुछ सूचनाएं हैं। पहली सूचना है दोस्तों की जो मैं लगातार आप लोगों को देता रहता हूं और वह है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आपको कल के अखबारों की वैसी ही मिलेंगी जैसे कि मिलती रही हैं। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, 2 योजना से 2 कुरुक्षेत्र से। 2 आर्टिकल इनमें से हिंदी के होंगे और 2 आर्टिकल इंग्लिश के होंगे। और मित्रों साथ ही आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा एक वीकली क्वेश्चन जो मेंस के पैटर्न पर होता है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों इस इंफॉर्मेशन के साथ ही साथ आज एक स्पेशल इंफॉर्मेशन भी है, और वो स्पेशल इंफॉर्मेशन इस बात को लेकर है दोस्तों, आप जानते हैं कि 2 दिन बाद ही यानी कि 19 फरवरी से एकेडमी की 15 दिन की क्लासेज शुरू होने जा रही हैं जो 5 मार्च तक चलेंगी, जिसमें देश भर के स्टूडेंट आकर के एक तरीके से डिस्कशन करेंगे कि सिविल सर्विस की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। मित्रों सूचना यह नहीं है कि अब आपको डेली ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि सूचना यह है कि परंपरा के विपरीत आपको डेली ऑडियो लेक्चर उसी तरह से अवेलेबल होता रहेगा जिस तरीके से वह अब तक अवेलेबल होता रहा है। मित्रों सच पूछे तो ये जो 15 दिन का गैप होता था यह मेरे लिए भी बड़ा रिक्तता का अनुभव कराने वाला होता था, लेकिन जो स्टूडेंट यहां होते थे उस खालीपन को भर देते थे। लेकिन महसूस किया गया कि नहीं, इसकी अगर हम कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं तो भर सक इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, और मुझे आपको यह सूचना देते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उसमें हम लोगों को सफलता मिली है, मिलेगी। तो दोस्तों अब अंतिम वाक्य यह है कि डेली ऑडियो लेक्चर आपको मंडे ऑनवर्ड्स उसी पैटर्न पर मिलता रहेगा जैसा कि अभी वह मिल रहा है, और लाइफ मैनेजमेंट भी अवेलेबल होगा। दोस्तों इस सूचना के बाद अब मैं अपने 6th बैच के स्टूडेंट्स को अंतिम बार इस माध्यम से उनका स्वागत कर रहा हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं और एक अर्ज भी कर रहा हूं या एक राय भी दे रहा हूं कि जैसे ही आप सब भोपाल पहुंचे प्लीज अपने पेरेंट्स को अपने पहुंच की सूचना देने से न चूके। सबसे पहला काम ये करें कि सेटल होने के बाद आप अपने पेरेंट्स को सूचित कर दें कि आप सब यहां बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गए हैं। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट 2 खबरें हैं। जो पहली खबर है वो अखबारों में भी है, न्यूज में भी आपने सुनी कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पद के लिए जो पलनी सामी हैं उनको शपथ दिला दी गई है और वे विधानसभा में कल ही अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें 15 दिन का वक्त दिया था, यानी कि अब हम लगभग इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि तमिलनाडु में जो एक राजनीतिक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, अस्थिरता बनी हुई थी, वह कम से कम अब एक परिणाम तक पहुंच रही है। मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो राज्यपाल हैं उन्होंने जो यह निर्णय लिया है, अखबार अब इसके बारे में लिखेंगे, शायद सबसे अधिक संवैधानिक निर्णय हो सकता है। संवैधानिक देखिए, संविधान में मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बहुमत दल के नेता को बुलाएंगे। तो अब बहुमत दल के नेता पर ही विवाद था। पनीर सेल्वम जी जो थे वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और चूंकि वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं तो राज्यपाल को यह लगा होगा कि चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तब उन्हें वापस लेने के लिए कहना ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में जबकि पार्टी के बहुमत दल का नेता अपनी तरफ से सरकार बनाने के लिए तैयार है और उन्होंने जो भी लिखित में आश्वासन दिया होगा, जो भी प्रमाण दिए होंगे, उससे राज्यपाल को यह संतुष्टि हो गई होगी कि नहीं, ये सरकार बना सकते हैं। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें 15 दिन का समय दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही वो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। दोस्तों, इसको लेकर के बहुत बहस हुई है कि ऐसे गंभीर परिस्थितियों में या जो एक द्वंद्व की स्थिति होती है क्या किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत स्पष्ट इसके बारे में निर्णय भी है कि जो भी फैसला हो वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हो, यानी कि विधानसभा में उसका निर्णय हो। तो अब ये उनके ऊपर है कि वो कैसे अपना विश्वास सिद्ध कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों, एक आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा जो जनरली सिविल सर्विस में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और वो तथ्य यह है कि जैसे एक बात आप बार बार सुन रहे हैं कि जो AIDMK के जो विधायक हैं वो एक रिजॉर्ट में एक ही जगह पर इकट्ठे किए गए हैं। पहले तो ये आरोप लगा कि उनको बंधक बनाया गया है, फिर लोगों से पूछा गया जब विधायकों से जाकर के तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें बंधक नहीं बनाया गया है। लेकिन यह है कि ये तो जरूर है कि उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने मन से तो कोई इस तरह से सारे विधायक एक जगह आकर के इकट्ठा होते नहीं, यदि वो विधानसभा नहीं है तो आप देखिए कि डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता होती है, विचारों की स्वतंत्रता होती है, लेकिन यदि आप उन्हें एक जगह पर इस तरीके से रख देंगे तो भले ही वो विधायक ये कह रहे हैं कि उन्हें बंधक नहीं बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिकेशन है वो इसी तरीके, इंडिकेशन तो इसी तरह के हैं कि दूसरा जो गुट है उनसे मिल ना सके, उनको बहका नहीं सके, उनसे सौदेबाजी, जो भी कह लीजिए, सौदेबाजी नहीं कह सके, उन्हें डरा धमका नहीं सके। तो इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन वो जो एक डेमोक्रेटिक जो करेक्टर होता है वह वहां दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो MLAs हैं जो वहां इकट्ठे हैं उन्हें अब अपनी तरफ से यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यूं कह लीजिए कि खत्म हो गई है कि वो पनीर सेल्वम जी के गुट में जाएं या फिर वो पलनी सामी जी के गुट में रहें। यह मैं केवल आपको एक संकेत के तौर पर कह रहा हूं कि किस तरीके से उनकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं बाधित हो ही रही है, जो डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये तथ्य आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी जो खबर थी न्यूज में वो थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, आपने महसूस किया होगा कि पूरी दुनिया में एक अलग किस्म की बेचैनी है, बिल्कुल ही अलग किस्म की बेचैनी है। करीब 15 दिन पहले की बात है, मैंने एक आर्टिकल लिखा भी था जो दैनिक जागरण में प्रसारित हुआ था, छपा था, उसमें मैंने यही बताया था कि अब कैसे एक नई विश्व व्यवस्था आकार लेगी और उसके केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति की वर्तमान नीति ही है। उसके तहत क्या है फ्रेंड्स कि जो इजराइल और फिलिस्तीनी जो दो देश हैं, अगर आप जाएंगे एशिया में तो आप देखेंगे कि ये दो देश, पहले फिलिस्तीनी यहूदियों का अपना एक स्थान है, वो अपना अलग अलग देश की मांग कर रहे हैं और बहुत ही लंबा संघर्ष चल रहा है। उन्होंने एक छोटे से हिस्से पर अधिकार करके वो वहां रह भी रहे हैं, वो अब उनकी अपनी सरकार है, कुछ लोग उस सरकार को मान्यता देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर यह कि फिलिस्तीनी एक देश है और इसराइल दूसरा देश है, यानी कि ये दोनों देश है। इसराइल नहीं मानता है कि फिलिस्तीनी कोई अलग देश है, इसराइल का कहना है कि नहीं, वो तो हमारा ही देश है, राइट। तो अभी तक अमेरिका भी यही मान करके चल रहा था कि भाई फिलिस्तीन अलग है और इसराइल अलग है, ये दो राष्ट्र का सिद्धांत हो गया कि दो ये अलग अलग राष्ट्र हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जी ने ये कहा है कि नहीं, यदि ये किया जाए फलाना फलाना, तो अमेरिका इसको एक ही राष्ट्र मान सकता है कि नहीं, ये दो नहीं है, एक है। एक है का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ही देश है और वो इसराइल है, तो फिलिस्तीनी का इसराइल में विलय होना चाहिए, हो जाना चाहिए, या इसराइल का अधिकार फिलिस्तीन पर हो जाना चाहिए, इसका यही मतलब हुआ, ये उन्होंने कहा है। तो ये भी बड़ी अनयूजुअल सी चीज है, पूरी दुनिया इस बात से भी बिल्कुल भौचक्की रह गई कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख है, उन्होंने प्रमुख शब्द का इस्तेमाल किया है, हालांकि जो यूएनओ के प्रमुख होते हैं तो महासचिव होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि पद नाम क्यों नहीं लिया गया है, प्रमुख कहा गया है। उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इन दोनों को अलग अलग मानकर चल रही है। ऐसी स्थिति में यह कह देना, और वो भी अमेरिका जैसे देश के द्वारा, डेफिनेटली इससे इसराइल का मनोबल बढ़ेगा, फिलिस्तीनी का मनोबल गिरेगा, और हो सकता है कि इसराइल फिर से एक आक्रामक हो जाए। और आपने ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा बीच में, कि कैसे इसराइल जो है कुछ पहाड़ियों के आसपास एक बस्तियां बना रहा है जहां 3,500 मकान बनाए जाएंगे। फिर इसराइल लगातार इस कोशिश में भी है कि जो गोलान हाइट्स है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था 2 साल पहले, प्री में पूछा गया था, जो गोलान हाइट्स है उस गोलान हाइट्स पर अमेरिका इसराइल का प्रभुत्व स्वीकार कर ले कि यह इसराइल के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस तरह की चीजें भी अभी आपको अखबार में पढ़ने को मिल रही होंगी। तो दोस्तों, इस लिहाज से इसराइल और फिलिस्तीनी का ये जो मामला है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला हो रहा है और इसे आपको भारत के संदर्भ में जरूर देखना होगा। दोस्तों, अभी मैंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, अब मैं एक राष्ट्र सिद्धांत पर आता हूं, राइट? तो दोस्तों, न्यूज से बस इतना ही। कल के अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको वन चाइना पॉलिसी के बारे में बताया था दोस्तों। अब आप देखिए कि चाइना कैसे वन चाइना पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, इसमें एक मामला क्या है दोस्तों। मामला यह है कि चीन, खासकर ताइवान, आपने नाम सुना होगा, एक देश, एक जगह है ताइवान जो बेसिकली आइलैंड है, और अगर आप नक्शे में देखेंगे, नक्शे में अगर कब की बात नहीं है, आपको देखना ही चाहिए, तो चाइना के दक्षिण में कह लीजिए और बिल्कुल पूर्व में जाएंगे, ये पूर्व एशिया का भाग है, ये जो भाग है ये पूर्व एशिया का है, तो वहां आपको ताइवान दिखाई देगा। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है। और जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि ये जो आइलैंड है, हालांकि छोटा सा है, लेकिन इसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ की है, 2,30,00,000 की है। मतलब कल्पना करके देखिए कि कितना बड़ा आइलैंड है, 2.25 करोड़ की आबादी का आइलैंड, एक बड़ा आइलैंड होता है। तो है क्या मित्रों, कि इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि रशिया, आपके चाइना में जो आंदोलन हुए, तो 1912 में वहां एक सरकार बनी, कम्युनिस्ट सरकार जैसी बनी, राष्ट्रवादियों की सरकार बनी, फिर वहां एक गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध शुरू होने के बाद फिर 1949 में अभी वर्तमान चीन का उदय हुआ है। थोड़ा सा आपको इतिहास में जाना होगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इतिहास में जाकर के आपको बताऊं। तो जब 1949 में वहां कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई चाइना में, जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है, तो उसके जो पहले जो पार्टी थी कोमिंगतांग, वो वहां से भाग गई, उनकी सरकार भाग गई, और वो भाग करके ताइवान में चले गए, उस आइलैंड में चले गए, और वहां उन्होंने अपनी सरकार बना ली और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो जो ताइवान है वो अपने को स्वतंत्र मानता है, यानी कि हम चीन के साथ नहीं है, और चीन उसको अपना हिस्सा मानता है, राइट? वैसे आप देखेंगे तो जो ताइवान है उसकी राजधानी तेईपेई है, उसकी अपनी राजधानी है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, जिसको कभी कभी आपको अखबारों में शायद पढ़ने को मिल जाए या प्री में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, वह है मंदारिन। मंदारिन उसकी लैंग्वेज है, लेकिन उनका जो राष्ट्रगान है, उनका जो ध्वज है, वो वही है जो चीन का है, जो चीन का है वही उनका राष्ट्र ध्वज है, और उनकी मुद्रा भी अपनी अलग है, वो है न्यू ताइवान डॉलर, ये उनकी मुद्रा है। लेकिन मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ये नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया है, आप समझ सकते हैं कि चीन तो सिक्योरिटी काउंसिल में है ना, तो चीन इसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि ताइवान कोई अलग देश है, वो तो चीन उसे अपना हिस्सा मानकर चलता है। तो अब देखिए कि एक बहुत सिंपल सी बात हो गई कि चीन और ताइवान एक ही हैं, ये एक राष्ट्र का सिद्धांत है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है मित्रों कि दुनिया के ज्यादातर देश चीन की इस वन नेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट भी करते हैं, जिनमें भारत भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका भी स्वीकार करता है कि नहीं, जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है। भारत भी वन नेशन पॉलिसी की बात मान करके चाइना के को स्वीकार करके चलता है। इसके बावजूद जो ताइवान है उसके साथ भारत के अलग संबंध भी हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उसके साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं है। ताइवान के साथ भारत के कोई राजनयिक संबंध नहीं है, सांस्कृतिक संबंध है। ताइवान का बकायदे जो सांस्कृतिक जो संगठन है वो भारत में है। कुछ एक दो दिन पहले ही आपने देखा होगा कि ताइवान के जो लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधिमंडल हैं, वो बकायदे भारत दौरे पर आते हैं, भारत की उनसे बातचीत होती है। तो भारत इसे एक तरीके का सांस्कृतिक संबंध मानता है, और यूं कह लीजिए कि चीन की जो वन नेशन पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट भी करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनसे फोन पर बात की थी, याद कीजिए अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो। और जब उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति से बात की तो इसका चीन ने बहुत कड़ा विरोध किया था कि आपने कैसे उनसे बात कर ली। देखिए, बात करने का मतलब ही यही हुआ कि भाई आप वहां के राष्ट्रपति को स्वीकार कर रहे हैं कि वो वहां के राष्ट्रपति हैं, तो एक देश में दो राष्ट्रपति कैसे होंगे। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आपने ताइवान को अलग मान लिया, यानी कि चीन की जो वन नेशन पॉलिसी है जिसे आप अभी तक स्वीकार कर रहे थे आप उस पॉलिसी को छोड़ रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। तो चीन ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। तो मित्रों, ये थोड़ी सी वन नेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे बात की है। अब मैं इसको सिविल सर्विस के लिहाज से आता हूं। फ्रेंड्स, आप सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे मित्रों, वो 2013 में पूछे गए थे मेंस के सेकेंड पेपर में, इसके बाद उनकी संख्या कम होती चली गई है। आपको चाहिए कि एक बार आप उसे उठा करके देखें, उस अनसॉल्व पेपर को देखें, और जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको थोड़ा सा, उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया अफगानिस्तान पर, उस समय अफगानिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल है, जो अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए जो फौज वहां रह रही थी, उसको वापस बुलाने की बात हुई। तो पहले तो वो स्टेटमेंट है, इसके बाद वो क्या कह रहा है जिस पर मैं स्पेशली आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस तथ्य के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत के सामने भरपूर चुनौतियां हैं तथा उसे अपने सामरिक महत्व के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। यानी कि समस्या अफगानिस्तान की है लेकिन उसमें भारत भी है। देखिए, आपको जो इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उसका चरित्र बता रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन तो चीन पर ही पूछ लिया गया है सीधे सीधे, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे मोतियों के हार कहा जाता है। मोतियों के हार से आप क्या समझते हैं, यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। आप देख रहे हैं, है वो चीन की पॉलिसी लेकिन भारत आ गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं इसी पैटर्न पर कि हो सकता वन चाइना पॉलिसी क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेकिन फिर यह होगा कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भारत के क्या विचार हैं, भारत क्या कदम उठाना चाहेगा, इस तरह के प्रश्न आपसे, मतलब इस तरह का उसमें इस तरह की बातें जोड़ दी जाएंगी। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहां देखने को मिल रही है। और आप देखिए दोस्तों कि बांग्लादेश के बारे में क्या पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के ढाका में शाहबाग स्क्वायर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने समाज में राष्ट्रवादी व इस्लामी शक्तियों के बीच मौलिक मतभेद उजागर किया है। घटना बांग्लादेश की है। आगे क्या पूछ रहे हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। आपने देखा फिर से भारत आ गया। और ये सारे प्रश्न मैं आपको एक साल का ही के ही पूछ रहा सुना रहा हूं मित्रों। भारत आ गया। इसके बाद और देखिए, मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, यह बताइए कि क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय है। यहां फिर भारत आ गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा भी जाता है तो उसमें भारत अनिवार्य रूप से आ जाता है। तो ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स के आप जब टॉपिक तैयार करेंगे सिविल सर्विस के लिए तो याद रखिए उसमें भारत की भूमिका, भारत के संबंध, भारत की नीति, भारत के उपाय, भारत के कदम, उन पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने कल आपसे वायदा किया था कि मैं वन चाइना पॉलिसी के बारे में कुछ बातें करूंगा, तो वो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। दोस्तों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं आपको बहुत सी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और अच्छी बात है कि दो दिन बीच में छुट्टियां भी हैं, आप इन्हें बहुत आराम से देख सकेंगे। एक क्लिपिंग्स जनसत्ता की है जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध है उसको लेकर के है, उसे आप जरूर देखिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है। आज इसरो पर बहुत सी क्लिपिंग्स है दोस्तों, इसरो की सफलता के ऊपर, और इसमें जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो यही है कि किस तरह से जो इसरो ने इनोवेट किया है, मतलब रिसर्च के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है और इसरो एक पब्लिक सेक्टर ही है और इतना लाभ का काम कर रहा है, तो इनोवेशन की दृष्टि से भारत उससे सीख ले सकता है और हमारे जो पब्लिक सेक्टर दूसरे जो नुकसान में चल रहे हैं वो भी सीख ले सकते हैं कि कैसे एक पब्लिक सेक्टर भी फायदे का काम कर सकता है। तो उसे हिंदुस्तान ने तो उसे एक रोल मॉडल के रूप में ही प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साथ मित्रों, कुछ हिंदू के हैं, कुछ इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल हैं, काफी आर्टिकल्स हैं, वो आप जरूर देखिएगा। और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि उनका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: गौरव वशिष्ठ, मनीष नगुलवार, डॉक्टर हरिकृष्ण आर्य अल्मोड़ा उत्तराखंड से, शंकर जायसवाल श्रीगंगानगर राजस्थान से, संजय कुमार रावत, रोशनी आप बिहार से हैं, काजल भारती पटना बिहार से, हेतराम प्रजापत जयपुर से, बबलू गोविंद वाले और निहारिका यादव, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं अपने सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट से ये बात कहना चाहूंगा ईमेल के अंतर्गत कि बहुत से फिफ्थ बैच के हमारे स्टूडेंट्स ने, और यहां तक कि उससे पहले बैच के स्टूडेंट्स ने भी आप सबको बहुत बहुत वेलकम किया है। और साथ ही आप सबसे उम्मीद की है कि आप किस तरीके से यहां एकेडमी में जाएं, यानी कि बिल्कुल खाली होकर के जाएं, निश्चिंत होकर के जाएं, ईगो को ड्रॉप करके जाएं और एक एक पल के यहां का उपयोग करें और इसका भरसक फायदा उठाने की कोशिश करें। तो इसके लिए भी मैं अपने इससे पहले के एक पहले से लेकर के पांचवें बैच तक के स्टूडेंट को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सच पूछे तो उनकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए यूं कह लीजिए कि उनके इन कथनों को पूरी अहमियत देता हूं और एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। ये बीच के आपके दो दिन बहुत सुखद हों, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।